नमस्कार, आज हम कुछ खास विचारों पर बात करने वाले हैं।
जी,
ये युग निर्माण सत्संकल्प से जुड़े हैं।
जी, ये पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दिए हुए विचार हैं, एक तरह का घोषणा पत्र कह सकते हैं इसे।
हाँ, और ये एक आंदोलन युग निर्माण की नींव रखते हैं।
मूल सोचिए
कि भाई व्यक्ति बदलेगा तो जमाना बदलेगा।
बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं विचारों के पीछे जो सिद्धांत है, जो जीवन दर्शन है, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, कि कैसे मतलब आत्म सुधार पर इतना जोर देकर एक बड़े बदलाव की बात की गई है।
जी, चलिए शुरू करते हैं फिर।
तो सबसे पहली चीज और शायद सबसे अहम वो नारा है।
जी,
है ना,
हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बहुत सीधा और शक्तिशाली।
हाँ, मतलब सारा फोकस बाहरी दुनिया या उपदेशों पर नहीं बल्कि खुद पर है,
अपने निर्माण पर।
और यही बात दिलचस्प है, अक्सर हम समाज को सिस्टम को बदलने की बात करते हैं।
सही कहा।
पर यहाँ पहली सीढ़ी है व्यक्ति का अपना चरित्र, उसके विचार, उसके कर्म, इनको सुधारो।
अच्छा, मान्यता यही कि अच्छे लोग होंगे तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा, ये वो जो वसुधैव कुटुंबकम की सोच है ना।
हाँ हाँ,
सारी दुनिया एक परिवार।
हाँ,
उसको जमीन पर उतारने का ये एक व्यावहारिक रास्ता है एक तरह से।
एक और बात जो मुझे थोड़ी चौंकाती है वो भाग्य और कर्म वाली है।
अच्छा,
क्या
कि हम तो अक्सर किस्मत को कोसते हैं, है ना, कि हालात ऐसे थे, भाग्य में यही था। पर ये स्रोत कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है।
तो क्या इसका मतलब है कि बाहरी चीजों का, परिस्थितियों का कोई मतलब ही नहीं?
नहीं, देखिए वो ये साफ करते हैं कि बाहरी परिस्थितियां या कोई अचानक आ जाने वाली मुसीबत, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या बाढ़ आ गई,
हाँ,
वो अपवाद है, नियम नहीं है।
अच्छा, वो नियम नहीं है।
नियम है पुरुषार्थ।
हाँ,
मतलब हमारा कर्म, हमारी कोशिश, जो हम आज करेंगे, जैसे विचार रखेंगे, जो काम करेंगे, वही कल हमारा भाग्य बनकर सामने आएगा। तो मतलब ग्रहों को दोष देने से अच्छा है अपनी आदतें सुधारो।
बिल्कुल, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी गतिविधियां, इन पर ध्यान दो। ये कर्म फल का सिद्धांत है। भगवान को न्याय करने वाला माना गया है तो कर्म का फल तो मिलेगा।
समझ गया, तो मतलब कर्म ही प्रधान है। अच्छा, इस संकल्प पत्र में तो शायद 18 सूत्र हैं।
जी हाँ, करीब 18 है।
कुछ खास बिंदुओं पर अगर नजर डालें, जैसे एक है कि मन में बुरे विचार ना आए, इसके लिए स्वाध्याय करो, मतलब खुद पढ़ो, और सत्संग करो, यानी अच्छे लोगों के साथ रहो।
ये बहुत जरूरी है। और साथ ही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इन गुणों को जीवन का हिस्सा बनाने की बात है।
हाँ, और एक और बात कि इंसान को उसकी कामयाबी या काबिलियत से नहीं,
बल्कि उसके विचारों और कर्मों से आंकना चाहिए।
सही, और वो जो परंपरा वाली बात थी।
हाँ, कि परंपराओं से ज्यादा विवेक को महत्व दो, अपनी समझ को।
ये तो उस समय के हिसाब से काफी आगे की सोच थी, नहीं?
बहुत प्रगतिशील, कि बस जो चला आ रहा है आंख बंद करके मत मानो, सोचो, समझो, फिर अपनाओ या छोड़ो।
सही कहा। तो ये सिर्फ कोई पूजा पाठ वाले संकल्प नहीं है, ये तो जीने के तरीके हैं।
बिल्कुल, व्यवहारिक सिद्धांत है, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और समाज में कैसे रहना है उसके लिए भी।
विवेक को परंपरा से ऊपर रखना, ये आज भी कितना जरूरी लगता है।
है ही, ये एक तरह से लगातार खुद को जांचते रहने और सुधारते रहने की प्रेरणा है।
अच्छा, एक और चीज थी।
जी,
वो 9 देवियों वाली बात।
जी,
ये बाहरी पूजा से हटकर
हैं
शायद।
हाँ, ये आंतरिक शक्तियों की बात करते हैं। कहते हैं 9 देवियां हमारे अंदर ही हैं।
अंदर कैसे, कौन सी हैं ये?
जैसे आकांक्षा मतलब इच्छा शक्ति, विचारणा यानी सोचने की शक्ति, भावना, श्रद्धा, प्रवृत्ति यानी काम में लगने का स्वभाव, निष्ठा यानी लगन,
क्षमता, क्रिया और मर्यादा। ये
हाँ जी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नजरिया है कि तरक्की करने के लिए जो ताकत चाहिए वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है।
अच्छा,
इन गुणों को, इन भीतरी शक्तियों को जगाओ, विकसित करो, तो सफलता मिलेगी ही। बाहरी मदद हो ना हो, अंदर की तैयारी पक्की होनी चाहिए।
ये तो काफी सशक्त बनाने वाला विचार है।
बिल्कुल।
और फिर अंत में वो एक सीधी चोट करते हैं कि भाई भाषणों का, लेखों का युग गया।
हाँ, दुनिया बातों से नहीं बदलेगी।
बड़ी बड़ी बातें करने से ज्यादा जरूरी है अपने चरित्र को बढ़िया बनाना, उत्कृष्ट बनाना।
एकदम सही, असरदार सीख या प्रेरणा अपने आचरण से ही दी जा सकती है। आप खुद जो करते हैं वही दूसरों को प्रेरित करेगा।
पर्सनल एक्सलेंस
वही दूसरों में गुडनेस लाएगी।
हाँ,
व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही दूसरों में श्रेष्ठता लाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि पहले खुद मिसाल बनो। जैसे एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चा दे सकती है,
हाँ।
वैसे ही उत्कृष्ट व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ समाज बना पाएंगे।
तो अगर सार निकालें तो ये युग निर्माण सत्संकल्प एक तरह का आह्वान है।
जी, एक पुकार है
कि अपनी जिम्मेदारी लो, खुद को बेहतर बनाओ और ये विश्वास रखो कि इसी से, सिर्फ इसी से एक बेहतर युग बनेगा।
हाँ, ये कर्म पर, विवेक पर और अच्छे नैतिक आचरण पर आधारित जिंदगी जीने का एक नक्शा देता है।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।
जरूर।
कि अगर ये स्रोत सही कहते हैं कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही सामूहिक श्रेष्ठता की जननी है, तो इसे सुनने के बाद आज अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता की तरफ कौन सा एक छोटा सा, बस एक छोटा कदम उठाने के बारे में सोचा जा सकता है।